If you've been hurt by a truck, you can call Colombo Law 24/7 and we'll be there to make sure you're taken care of. When someone is hurt by a truck, Colombo Law is the law firm people call to get answers. Hurt by a truck? Call Colombo Law.
Hey there, you're listening to The Quint.
हम कितना सुनते हैं कि नाम का असर इंसानों पे पड़ता है, जैसे कि लोग अपनी बेटियों का नाम आदिला इस उम्मीद में रखते हैं कि वो ऑनेस्ट और अदलो इंसाफ यानी हक ट्रूथ की राह पर चलने वाली बनेंगी। बेटों का नाम शहरियार रखते हैं ताकि वो एक एम्परर जितना आला बने। नायला नाम रखते हैं बेटियों का ताकि उनकी बेटियां अचीवर्स बन पाएं, विनर्स बन पाए बड़े होकर। इरफान भी कई लोगों का नाम होता है ना। इरफान यानी नॉलेज, विजडम, एंड नॉलेज के बारे में तो कहते ही हैं कि नॉलेज इज पावर। और इस नाम का पूरा पूरा असर हमने एक इंसान पर पड़ते हुए देखा है, इरफान खान। एक निहायत ही पावरफुल एक्टर, उनकी पर्सनालिटी में इरफानियत इस कदर झलकती थी, उनका विजडम उनकी आंखों से बात करता था कि अब जब वो नहीं रहे तब भी दिल मानता ही नहीं है कि वो नहीं है। इरफान खान और उनका विजडम उनके काम में, उनके नाम में, और वो खुद एक इंस्टीट्यूशन। आज उर्दू नामा का ये एपिसोड इरफान के नाम। द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा, मैं हूं फबेहा सैयद। याद कीजिए 2020 में जब हमें COVID-19 से बचने के लिए लॉकडाउन झेलना पड़ा था, उस साल वो पहला लॉकडाउन था जिसे लगे हुए करीब एक महीना ही हुआ होगा। हम सब उस वक्त अपने वर्क फ्रॉम होम की नई तर्ज पर जिंदगियां जीने की कोशिश कर रहे थे, नई चीज़ें सीख रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, अकेले रहने की आदत डाल रहे थे कि 28 अप्रैल को न्यूज़ आई कि इरफान खान को मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगले ही दिन 29 तारीख को ये खबर आती है कि साहबजादे इरफान अली खान दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई अपना चला गया, घर में वही वीरानी और वहशत जैसे कोई अपना ही खत्म हो गया हो। इरफान खान के इंतकाल के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ऋषि कपूर की भी गुजरने की खबर आ गई। खुद को कितना समझाया कि इरफान सिर्फ एक एक्टर थे, कभी उनसे पर्सनली हम मिले नहीं तो इतना गम करने की जरूरत है नहीं, वैसे भी पैंडमिक ने बहुत कमजोर किया हुआ है तो इस न्यूज को दिल पे इतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल मानने को राजी नहीं, दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि इरफान कोई पराया इंसान थे। जब भी वो स्क्रीन पर आते क्लोजअप में तो ऐसा लगता जैसे अपनी बड़ी बड़ी गहरी आंखों से वो मानो हमको ही डायरेक्टली देख रहे हो। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इस कदर की इंटीमेट फील होती थी। देखिए उर्दू नामा में मैं उर्दू का एक लफ्ज लेती हूँ और उसका मतलब शायरी और रोजमर्रा के इस्तेमाल के हवाले से समझाती हूँ, समझती हूँ, खुद भी समझती हूँ। मैं इस पॉडकास्ट में जो लिटरेरी या लिटरेचर और पोएट्री से करीब जो पर्सनालिटीज हैं उनको भी खिराज अकीदत पेश करती रहती हूँ, उन लोगों के बॉडी ऑफ वर्क को याद करके, उन्हें सेलिब्रेट करके। इस एपिसोड में भी वही कर रही हूँ, लेकिन उर्दू नामा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मारूफ शख्सियत के काम को नहीं बल्कि उनके नाम के मायने समझ कर उन्हें याद किया जा रहा है। और क्योंकि आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इरफान खान को उनकी इरफान गजीदगी की वजह से और ज्यादा याद रखेंगे। इरफान यानी विजडम और गजीदगी यानी बिटन, डंक लगना। इरफान गजीदगी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो किसी डीप विजडम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लखनऊ की शायरा हैं अजरा परवीन, इनकलाबी शायरी करती हैं और सोशल इश्यूज पर खूब लिखती हैं। अपनी इस नज्म में इरफान गजीदगी के बारे में लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है आइए सुनते हैं। मैंने अपने अंदर अंदर जितना कुछ भी रखा था, मैंने अपने आप से अपने बारे में जो कुछ भी सुन रखा था, मैंने अपने आप को जितना जैसा फर्ज किया था, मैं उससे भी और सिवा थी। मिट्टी थी मैं पानी थी, आग भी थी जितनी मैं हवा थी, लेकिन अपनी सब जिहतों से मुतारिफ हो जाना खुद को कितना महंगा पड़ सकता है। देख रही हूँ मूंद के आंखें सखी, कि इरफान गजीदा आंख ने देखा है कि अबदी अबदी खसारा है। इरफान गजीदा जैसा भी आपको बताया, दैट इट मींस विजडम से किसी को डंक लग गया हो, जस्ट अ वे ऑफ सेइंग दैट वन हैज गेन्ड विजडम। तो इस नज्म में ये कह रही हैं कि मैंने अपने आप के बारे में जो कुछ अज्यूम किया हुआ था खुद को जो कुछ समझ रखा था मैं उस सब से कहीं ज्यादा निकली। फिर वो कहती हैं कि मैं मिट्टी, पानी, आग, हवा तो थी ही, लेकिन इनके अलावा भी मेरी कई और डायमेंशंस हैं, सूरतें हैं। और आगे वो ये भी लिखती हैं कि उन सब का अंदाज़ा होना, उन सभी बाकी औरतों से वाकिफ हो जाना, वो सारी बाकी औरतें जो मेरे अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनसे वाकिफ हो जाना बहुत ही महंगा पड़ा। किस तरह महंगा पड़ा? इसे ऐसे समझिए कि अपना पोटेंशियल जब हमें पता लग जाता है कि वो कितना है, तो हम चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द काम शुरू करें कि अपने पोटेंशियल तक पहुंचे, उसे पूरा करने के लिए, उसे अचीव करने की हमारी ख्वाहिश शुरू हो जाती है, एक ड्राइव पैदा हो जाती है। लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें खासकर औरतों को अपने पोटेंशियल तक रीच करना तो दूर की बात, उसे अपनी स्ट्रेंथ्स पता ही नहीं चल पाती है। तो ये नज़्म, ये हिस्सा जो है, महंगा पड़ने वाली बात जो है, ये उस पोटेंशियल तक ना पहुंच पाने की जो मजबूरी है, मायूसी है, उस पर कमेंट है। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। लेकिन अपनी सभी जिहतों से मुतारिफ हो जाना खुद को कितना महंगा पड़ सकता है। देख रही हूँ मूंद के आंखें सखी के इरफान गजीदा आंख ने देखा है एक अबदी अबदी खसारा कि अपना पोटेंशियल अचीव करना आसान नहीं है। पोटेंशियल से गाफिल रहती तो और बात थी, अब पता चल गया कि मैं क्या कर सकती हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ तो दर्द होता है। बेड़ियां हैं समाज की। और आखिर में लिखती हैं वो कि नाउ दैट आई हैव अंडरस्टूड द विजडम एंड आई एम नाउ मोर सेल्फ अवेयर आई हैव रियलाइज्ड एक अबदी अबदी खसारा है, यानी मेरे लिए एक एंडलेस लॉस है। इंसान का इरफान खुद के लिए जब जागता है वो मोमेंट लाइफ चेंजिंग होता है। सीमाब अकबराबादी का एक शेर इसी तर्ज पर है। इनके बारे में आपको बता दूं, सीमाब अकबराबादी खुद ना सिर्फ एक शायर थे बल्कि हर तरह के लिटरेरी फॉर्म्स में वो लिखा करते थे, ट्रांसलेशंस करते थे, नज़में, गज़लें, रुबाई, एसेज वगैरह वगैरह। कुरान का एक उर्दू ट्रांसलेशन इन्होंने लिखा था वर्स की फॉर्म में, लेकिन उसके लिए कभी कोई पब्लिशर नहीं मिल पाया। खैर, सीमाब अकबराबादी का आप ये शेर सुनिए जिसमें वो नफ्स के इरफान की बात कर रहे हैं। लिखते हैं, जो सालिक है तो अपने नफ्स का इरफान पैदा कर, जो सालिक है तो अपने नफ्स का इरफान पैदा कर, हकीकत तेरी क्या है पहले ये पहचान पैदा कर। नफ्स यानी फ्लैश बींग, सालिक यानी ट्रैवलर, यानी यहाँ पर ये मतलब है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल गया हो वो सालिक है। जो सालिक है तो अपने नफ्स का इरफान पैदा कर, हकीकत तेरी क्या है पहले ये पहचान पैदा कर। द ओनली वे टू नो योर इरफान, यानी द ओनली वे टू गेन विजडम अबाउट योर सेल्फ इज थ्रू एन आइडेंटिटी, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर ट्रूथ। हमारा ट्रूथ हमारी पहचान होती है। और पता है क्या, हमारी आइडेंटिटी किससे बनती है? हमारी हैबिट से, जो सिस्टम हम खुद के लिए इजाद करते हैं टू रीच अ सर्टन गोल और गोल्स, और उस प्रोसेस में जो जो एक्शंस हम लेते हैं वो सब मिलकर हमारी आइडेंटिटी बनाता है, क्योंकि वो सारे एक्शंस जो हम ले रहे होते हैं वो हमारे डिसीजंस होते हैं, और हमारे डिसीजंस, हमारी चॉइसेस हमारी आइडेंटिटी बन जाती है ना। तो सेल्फ अवेयरनेस का विजडम यानी नफ्स का इरफान क्या है, ये हमारी हैबिट्स डिसाइड करती हैं। वी आर आर हैबिट्स, पीरियड। सीमाब अकबराबादी की गजल जो मैं अभी जिसका शेर पढ़ा था, मैं वो पूरी पढ़ना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी गजल ध्यान से सुनेंगे ना बड़ा ही मजा आएगा। एक ही तरह का थीम है पर गजल के हर शेर का अलग अलग मतलब होता है, तो वही एक ही बात है पर अलग अलग ढंग से कह रहे हैं। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू रीड, सो आई जस्ट रीड इट फॉर यू। सीमाब अकबराबादी लिखते हैं, जो सालिक है तो अपने नफ्स का इरफान पैदा कर, हकीकत तेरी क्या है पहले ये पहचान पैदा कर। जहाँ जाने को सब दुश्वार ही दुश्वार कहते हैं, वहाँ जाने का कोई रास्ता आसान पैदा कर। हकीकत का कहे जो हाल, कर ऐसी जबान पैदा, मोहब्बत की सुने जो गीत ऐसे कान पैदा कर। इलाही भेद तेरे उसने जाहिर कर दिए सब पर, कहा था किसने तू सीमाब को इंसान पैदा कर। हाउ ब्यूटिफुल। और इसी बात को, यानी अपनी जात के इरफान के एहसास को खुदा की तलाश से भी जोड़ा गया है। नदीम फाजली जिंदगी की हकीकत पर लिखते हैं, खासकर इस दौर में जब इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है, ये पर्टिकुलर शेर सुनिए आप जिसमें वो जात के इरफान की बात कर रहे हैं, हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जो विजडम हमें समझ आता है उसके बारे में लिखते हैं। अब अपनी जात का इरफान होने वाला है, आई एम गोइंग टू गेन विजडम अबाउट माई बींग द सेल्फ। अब अपनी जात का इरफान होने वाला है, خدا سے رابطہ آسان ہونے والا ہے. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ کچھ یاد آیا؟ اہم برہماسمی، واٹ ڈز اٹ مین کہ میں ٹروتھ ہوں؟ کیسے بھول گئے آپ وہ ایپیسوڈ جس میں میں نے نہیں، پروفیسر عبد البسم اللہ نے بہت ہی اچھے سے یہ کانسیپٹ سکھایا تھا. جب اردو نامہ نیا نیا شروع ہوا تھا نا، تو ارضیاں ایک ایپیسوڈ ہم نے بنایا تھا، اس میں وہ ٹروتھ، عشق حقیقی، عشق مجازی کے بارے میں بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہے ہیں. پدماوت جو کہانی ہے اصل، وہ بھی سناتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ ایپیسوڈ نہیں سنا ہے تو پلیز اردو نامہ کی پلے لسٹ آپ جا کے دیکھیے، اس میں ارضیاں ایپیسوڈ ہے، وہ کلک کریے اور پورا کا پورا پوڈ کاسٹ جو ہے شروع سے لے کے آخر تک سن لیجیے. کوئنٹ کی ویب سائٹ پہ تو مل ہی سکتا ہے، اس کے علاوہ گوگل پوڈ کاسٹ، ایپل پوڈ کاسٹ، جیو ساون اور اسپوٹیفائی پہ یہ ایپیسوڈ فوراً مل سکتا ہے. یا سو کمنگ بیک ٹو ذات کا عرفان، جو ندیم فاضلی کا شعر پڑھ رہی تھی کہ اب اپنی ذات کا عرفان ہونے والا ہے، خدا سے رابطہ آسان ہونے والا ہے. یعنی خدا سے رابطہ جب ہوگا تبھی انسان اس کو اس کی ذات میں چھپا ہوا عرفان سمجھ پائے گا. اب آپ آگے یہ شعر سنیے، اس میں کہا گیا ہے کہ ذات کا عرفان یعنی بینگ، جو سیلف کا وزڈم ہے، اکیلے پن میں انسان کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل بات دوسروں سے جانیں گے تو بہتر پتہ چلے گا. شجا خاور کا یہ شعر ہے، لکھتے ہیں، اوروں سے پوچھئے تو حقیقت پتا چلے، تنہائی میں تو ذات کا عرفان ہو چکا. Doesn't need any explanation. Now, wisdom کیا صرف سیلف اویئرنیس ہے، جس میں ہم صرف اپنے پوٹینشیل کے بارے میں اویئر ہوتے ہیں؟ اسے بھی تو wisdom کہیں گے نا، عرفان کہیں گے، جو ہمیں ہمارے خالی پن سے، کھوکھلے پن سے آگاہ کراتا ہے. کیونکہ ہم سب جتنے بھاری بھرکم سوچ رکھتے ہیں، اپنے بھاری بھرکم خود کو سمجھتے ہیں، اتنے ہی کہیں کہیں سے کھوکھلے بھی ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں. انسان بہت انسیکیور ہوتا ہے، اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اپنی انسیکیورٹی کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں دیٹ یس آئی ایم اے ویری انسیکیور پرسن. اور یہ احساس ہونا بھی نا ذات کے عرفان کی علامت ہے. مسعود قریشی کا یہ شعر مجھے کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے ہماری ذات کے عرفان کے بارے میں، جب وہ لکھتے ہیں کہ حقیقتوں کا بھی عرفان ہو سوزے جاں بھی رہے، حقیقتوں کا بھی عرفان ہو سوزے جاں بھی رہے، خلا میں بھی ہوں قدم سر پہ آسماں بھی رہے. کہ ہم ہماری ریالٹی سے واقف رہیں اور ساتھ میں سوزے جان سے بھی اویئر رہیں، یعنی اینگوش آف لائف. خلا میں بھی ہو قدم سر پہ آسماں بھی رہے، یعنی تھوڑے سے لاسٹ بھی رہیں اور کبھی کبھی سر پہ آسماں کے ہونے کا بھی احساس رہتا رہے. اسی لیے خود کو جانیے، ذات کا عرفان آپ کے لیے کیا کہتا ہے، کیا کیا فیصلے لینے کے لیے وہ آپ کو کوہنی مار رہا ہے، کہاں جانے کے لیے کہہ رہا ہے، سنیے غور سے. اور آپ کی ذات کا عرفان اس وقت آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ وقت رہتے سن لیجیے، کر لیجیے. اپنا خیال رکھیے، اگلے ہفتے دوبارہ ملتی ہوں. خدا حافظ.